अगर हम पृथ्वी के पूरे 4.6 अरब साल के इतिहास को ना सिकोड़कर बस एक 24 घंटे के दिन में बदल दें तो जानते क्या होगा?
क्या होगा?
आधी रात को ठीक 12 बजे पृथ्वी बनती है, और फिर सुबह के या दोपहर के या यहाँ तक कि शाम के समय भी हम इंसान कहीं नजर ही नहीं आते।
अरे वाह!
हाँ, मतलब डायनासोर्स रात के करीब 10:45 बजे के आसपास प्रकट होते हैं, और हमारा जो पूरा मानव इतिहास है ना, मतलब वो पिरामिडों का बनना, बड़े बड़े साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति और आज का ये इंटरनेट, ये सब रात के 11:59 और 59 सेकंड के बस उस आखिरी मिली सेकंड में होता है।
ये परिप्रेक्ष्य वाकई दिमाग घुमा देने वाला है।
बिल्कुल, ये सोचने का नजरिया ही हमारे अहंकार को चकनाचूर कर देता है।
सही बात है, क्योंकि हम इंसान समय को ना बस दिनों, हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा सदियों में मापने के आदी हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी के इतिहास की बात करते हैं तो ये पैमाना पूरी तरह से टूट जाता है।
एकदम सही कहा।
तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यानी भूवैज्ञानिक समय सारणी या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो कोई आम कैलेंडर नहीं है। मतलब यह महाद्वीपों के टकराने, महासागरों के उबलने और जीवों के सामूहिक विनाश का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे सीधे चट्टानों में उकेरा गया है।
और यही बात आज की इस चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब आज हम सुनने वालों के साथ मिलकर उस समय रेखा को डिकोड करने वाले हैं जो हमें बताती है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे।
बिल्कुल।
लेकिन देखिए, इस कैलेंडर को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि वैज्ञानिक इस इतने अनंत समय को नापते और बांटते कैसे हैं, क्योंकि इसके लिए हम सेकेंड या घंटे का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, है ना?
हाँ, वो पैमाना यहाँ काम नहीं आएगा।
तो इसे समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। क्या हम पृथ्वी के इतिहास को एक एनसाइक्लोपीडिया की सीरीज मान सकते हैं?
हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का।
तो जहां समय की जो सबसे बड़ी इकाई है, जिसे ईऑन कहते हैं, वो मान लीजिए पूरी की पूरी सीरीज होगी।
हाँ ठीक है।
फिर इस सीरीज के अंदर जो अलग अलग किताबें हैं, उन्हें हम महाकल्प या एरा कह सकते हैं। और हर किताब के अंदर जो अध्याय या चैप्टर्स हैं, वो कल्प या पीरियड हैं, और किसी अध्याय का एक विशेष पन्ना युग यानी एपोक कहलाता है।
ये लेबल्स को समझने का वाकई एक बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन यहाँ ना एक और परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है।
अच्छा, वो क्या?
देखिए, ये इंसाइक्लोपीडिया किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपी है, बल्कि ये जमीन के नीचे चट्टानों की परतों में दबी है। विज्ञान की भाषा में इसे हम स्ट्रेटोग्राफी कहते हैं।
मतलब चट्टानों की परतों का अध्ययन?
बिल्कुल। इसे ऐसे कपड़े की टोकरी की तरह समझें जिसमें हम हफ्तों से गंदे कपड़े डाल रहे हैं।
हाँ ठीक है।
जो कपड़े सबसे नीचे हैं, वे जाहिर है सबसे पुराने हैं, जो शायद अब दबकर मुड़ चुके हैं और उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। यह पृथ्वी का शुरुआती इतिहास है। और जो कपड़े सबसे ऊपर हैं, वे सबसे नए और साफ हैं, जो हमारा हालिया इतिहास है। वैज्ञानिक इन चट्टानों की परतों में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टूटने की दर को मापते हैं।
जिसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाता है।
हाँ एकदम सही। जैसे यूरेनियम जैसे तत्व एक निश्चित गति से सीसे में यानी लेड में बदलते हैं।
ये चट्टानों के अंदर टिक टिक करती है घड़ी की तरह है, जिससे हमें सटीक उम्र का पता चलता है।
अरे वाह!
और मजे की बात यह है कि एक ईऑन से दूसरे ईऑन या एक महाकल्प से दूसरे महाकल्प में जाने का मतलब कोई तारीख बदलना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका मतलब है पृथ्वी पर कोई बहुत भयानक बदलाव होना, जैसे किसी नए प्रकार की चट्टान का बनना या जीवों का पूरी तरह से विलुप्त हो जाना।
ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो चलिए इस कपड़ों की टोकरी के सबसे निचले हिस्से में चलते हैं। स्रोतों के अनुसार पृथ्वी का इतिहास मुख्य रूप से 4 ईऑन में बटा है।
हाँ, और ये जानकर हैरानी होती है कि पृथ्वी के इतिहास का लगभग 88% हिस्सा शुरुआती 3 ईऑन में ही बीत गया। इन तीनों को सामूहिक रूप से प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है।
और ये 88% इतिहास ना वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है।
ऐसा क्यों?
क्योंकि इसकी चट्टानें समय और भूगर्भीय दबाव के साथ बहुत अधिक नष्ट हो चुकी हैं। मतलब उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है।
समझ गया। तो इस प्री कैम्ब्रियन काल का पहला हिस्सा हैडियन ईऑन है। ये 4.6 अरब साल पहले से 4 अरब साल पहले तक का समय था। और जितना मैंने पढ़ा है, यह पृथ्वी नहीं बल्कि एक उबलता हुआ नरक था।
बिल्कुल, एकदम नरक।
मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं, हर तरफ दहकता हुआ लावा और अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की लगातार बारिश। तो यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है,
पूछिए।
अगर शुरुआती इतनी हिंसक और ऐसी थी तो ये सब शांत कैसे हुआ और जीवन पनपने की गुंजाइश कहाँ से बनी?
देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। अगले ईयन, जिसे आखेनियान कहते हैं, जो 4 से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक चला, उसमें पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी।
अच्छा।
हाँ, जब लावा ठंडा हुआ तो एक ठोस पपड़ी यानी क्रस्ट बनी। ज्वालामुखी फटने से खूब सारी जलवाष्प निकली जो बादलों में बदली और फिर सदियों तक लगातार भयंकर बारिश होती रही।
सदियों तक बारिश?
हाँ, इसी बारिश ने हमारे शुरुआती महासागरों का निर्माण किया और जीवन के लिए जो सबसे पहली प्रयोगशाला चाहिए थी ना, वो पानी ही था।
और यहीं पर वो पहला चमत्कार हुआ है ना। पानी में एक सूक्ष्म एक कोशिकीय बैक्टीरिया, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उसने जन्म लिया।
बिल्कुल।
लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा।
हाँ।
मतलब हम बात कर रहे हैं एक बैक्टीरिया की, एक छोटा सा ना दिखने वाला बैक्टीरिया पूरी पृथ्वी का इतिहास कैसे बदल सकता है?
ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब ये है कि इस बैक्टीरिया ने एक ऐसा हथियार विकसित कर लिया था जो उस समय पृथ्वी पर किसी के पास नहीं था।
हथियार? कैसा हथियार?
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस।
सूरज की रोशनी से खाना बनाना।
एकदम सही। साइनोबैक्टीरिया सूरज की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाने लगे, लेकिन इस प्रक्रिया का एक बाय प्रोडक्ट या कह लें कि कचरा भी था।
कचरा?
हाँ, और वो कचरा था ऑक्सीजन गैस। हम अब तीसरे ईयान, प्रोटोरोजोइक ईयान की बात कर रहे हैं। करोड़ों सालों तक ये छोटे छोटे बैक्टीरिया ऑक्सीजन उगलते रहे। इसे विज्ञान में ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है।
एक मिनट रुकिए, तो आप ये कह रही हैं कि ऑक्सीजन, जिसके बिना हम आज एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते, वो असल में एक बैक्टीरिया का छोड़ा हुआ कचरा था?
सिर्फ कचरा ही नहीं, बल्कि उस समय मौजूद अन्य सभी जीवों के लिए एक बेहद जहरीली गैस थी।
अरे बाप रे।
हाँ, शुरुआती जीवन पूरी तरह से बिना ऑक्सीजन के पनपा था। तो जब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बढ़ा, तो ये पृथ्वी के इतिहास का पहला सबसे बड़ा सामूहिक विनाश या मास एक्सटिंक्शन था।
मतलब ऑक्सीजन ने सबको मार डाला?
हाँ, ऑक्सीजन ने उन पुराने जीवों को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन उन इसी जहरीली गैस ने भविष्य के जटिल जीवन के लिए एक ऊर्जावान ईंधन का काम भी किया।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, ऑक्सीजन की उच्च ऊर्जा के कारण ही जीव एक कोशिका से आगे बढ़कर बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर बन पाए, जैसे कि समुद्रों में तैरने वाली शुरुआती जेलीफिश और स्पंज।
हाँ, ये वाकई दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है कि एक गैस जो किसी के लिए जहर थी, वही हमारे अस्तित्व की नींव बनी।
बिल्कुल, प्रकृति ऐसे ही काम करती है।
तो अब यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ी छलांग लगाती है। हम चौथे और वर्तमान ईयान, फेनेरोजोइक ईयान में प्रवेश करते हैं। ये 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और इसे दृश्य जीवन का काल कहते हैं।
हाँ, क्योंकि यहाँ से जीवन सच में बड़ा और दिखने लायक हो गया था।
इसके पहले महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प की शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट या कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अब ये कोई सच का बम विस्फोट तो था नहीं, तो अचानक से जीवन में ये विस्फोट कैसे हुआ?
ये असल में एक विकासवादी हथियारों की होड़ थी, इवोल्यूशनरी आर्म्स रेस।
हथियारों की होड़
जीवों के बीच?
हाँ, कैम्ब्रियन विस्फोट से पहले जीव बहुत नरम शरीर वाले होते थे, जैसे जेलीफिश। लेकिन फिर किसी जीव ने पहली बार देखने की क्षमता यानी आंखें विकसित कर ली।
मतलब अचानक से एक शिकारी अपने शिकार को देख सकता था?
बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए, आप लाखों सालों से अंधेरे में शांति से तैर रहे हैं और अचानक कोई आपको देख सकता है और खा सकता है, तो बचने के लिए आपको क्या चाहिए?
कवच या कोई ढाल?
एकदम सही, कवच। यहीं से ट्रिलोबाइट्स जैसे जीवों का उदय हुआ, जिनके शरीर पर कठोर कवच थे। दांत, पंजे, रीढ़ की हड्डी, ये सब इसी होड़ का नतीजा थे।
अरे वाह! शिकार और शिकारी के इस भयंकर दबाव ने बहुत ही कम समय में जीवों के अनगिनत नए रूप कर दिए। इसी को कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं।
और यही वो समय है जब जीवन केवल पानी तक सीमित नहीं रहा है ना। पैलियोजोइक महाकल्प के अलग अलग कल्पों में विकास की एक चेन रिएक्शन देखने को मिलती है।
हाँ, जीवन जमीन की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे ऑर्डोविशियन कल्प में पौधे जमीन पर आए, फिर डेवोनियन कल्प में, जिसे मछलियों का युग कहते हैं, कुछ जीवों ने समुद्र से निकलकर जमीन पर सांस लेना सीखा और उभयचर यानी एम्फीबियंस बने।
बिल्कुल सही जा रहे हैं आप।
लेकिन जो सबसे रोमांचक हिस्सा है वो इसके बाद आता है, कार्बोनिफेरस कल्प। और यहाँ ना एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट छिपा है श्रोताओं के लिए। हम जानते हैं कि इस समय पृथ्वी पर घने दलदली जंगल थे जो आज हमारा कोयला बन गए हैं।
हाँ, पूरी दुनिया का ज्यादातर कोयला इसी काल का है।
लेकिन वे जंगल कोयले में क्यों बदल गए? मतलब वे सामान्य तरीके से सड़कर मिट्टी में क्यों नहीं मिल गए जैसे आज के पेड़ मिलते हैं? यह भूविज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। देखिए, कार्बोनिफेरस कल्प के दौरान पेड़ों ने लंबा और मजबूत होने के लिए एक नया रासायनिक पदार्थ विकसित किया था। इसे लिग्निन कहते हैं।
लिग्निन? हाँ।
यह वही तत्व है जो लकड़ी को कठोर बनाता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय पृथ्वी पर मौजूद किसी भी कवक यानी फंगस या बैक्टीरिया ने लिग्निन को पचाने या खाने की क्षमता विकसित ही नहीं की थी।
एक मिनट, मतलब लकड़ियों को सड़ाने वाला पूरी दुनिया में कोई था ही नहीं।
ठीक कहा आपने। इसलिए जब ये विशाल पेड़ मरते थे तो वे सड़ते नहीं थे, वे बस एकियों के ऊपर एक गिरते गए और दलदलों में दबते गए।
बाप रे।
करोड़ों सालों तक ये बिना सड़े पेड़ जमीन के नीचे भारी दबाव और गर्मी के कारण संकुचित होके कोयले में बदल गए। आज ऐसा कभी नहीं हो सकता।
क्यों?
क्योंकि आज के फंगस ने उसे सड़ाना सीख लिया है। बिल्कुल, आज फंगस लकड़ी को आसानी से सड़ा देते हैं। तो आज हम जो भी कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं ना, वो असल में उन्हीं प्राचीन बिना सड़े पेड़ों की जमा की हुई सूरज की ऊर्जा है।
ये वाकई अद्भुत है। हम सचमुच करोड़ों साल पुरानी धूप जला रहे हैं। लेकिन विकास का ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं चला है ना। पैलियोजोइक महाकल्प का अंत एक भयंकर दुस्वप्न के साथ हुआ, पर्मियन कल्प का अंत।
हाँ, वो बहुत भयानक समय था।
इसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है, जहां 95% समुद्री जीवन और 70% जमीनी जीवन खत्म हो गया। मेरा सवाल यह है कि प्रकृति ने इतने करोड़ों सालों तक जीवन का विकास किया और फिर अचानक ये रीसेट बटन क्यों दबा दिया?
देखिए, इसे रीसेट बटन कहना शायद प्रकृति के साथ अन्याय होगा।
अच्छा।
हाँ, क्योंकि ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि एक भयानक भूगर्भीय घटना थी। हुआ ये था कि आज के साइबेरिया के इलाके में लाखों सालों तक लगातार भयानक ज्वालामुखी फटे।
लाखों सालों तक?
जी हाँ। और इससे वायुमंडल में इतनी ग्रीन हाउस गैसें भर गईं कि महासागर उबलने लगे और तेजाब में बदल गए। ये विकास की विफलता नहीं थी, बल्कि पर्यावरण का इतनी तेजी से बदलना था कि जीव उसके अनुसार खुद को ढाल ही नहीं पाए।
समझ गया। लेकिन जो 5% जीव बच गए, उन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इसी राख से शुरुआत होती है अगले महाकल्प की, मेसोजोइक महाकल्प, जिसे हम डायनासोर का युग कहते हैं। ये 25.2 करोड़ से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला।
और यहाँ हमें ये समझना होगा कि पर्मियन विनाश के कारण जो जगहें, जिन्हें हम इकोलॉजिकल निशेज कहते हैं, खाली हुई थी, डायनासोरों ने उनका पूरा फायदा उठाया।
मतलब उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया।
बिल्कुल। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस कल्पों के दौरान उन्होंने जमीन, आसमान और पानी, हर जगह अपना दबदबा बना लिया।
लेकिन एक बात बताइए, जब डायनासोर विशालकाय हो रहे थे, तब हमारे पूर्वज यानी शुरुआती स्तनधारी मैमल्स क्या कर रहे थे?
वे एक बहुत ही मुश्किल जीवन जी रहे थे।
छिपकर?
हाँ, डायनासोरों ने दिन के समय की पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, इसलिए स्तनधारियों के पास छिपकर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इवोल्यूशनरी प्रेशर ने उन्हें छोटा बने रहने पर मजबूर किया।
तो वो कैसे दिखते थे?
वे चूहों जैसे आकार के थे, जमीन के नीचे बिलों में रहते थे और रात के अंधेरे में कीड़े मकौड़े खाते थे। रात की ठंड से बचने के लिए ही उन्होंने गर्म खून और शरीर पर बाल विकसित किए।
और यही वो विडंबना है जिसने इतिहास पलट दिया। मतलब जब क्रिटेशियस कल्प के अंत में वो कुख्यात उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया, तो कहानी सिर्फ उस टक्कर की नहीं थी। टक्कर के बाद जो धूल और राख उड़ी, उसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक दिया। एक ग्लोबल न्यूक्लियर विंटर आ गई।
बिल्कुल। सूरज की रोशनी रुकी तो पौधे मर गए, पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले विशाल शाकाहारी डायनासोर भूखे मर गए, और अंततः टीरेक्स जैसे खूंखार मांसाहारी भी खत्म हो गए।
पूरी फूड चेन ही ढह गई।
हाँ, अचानक से विशाल होना अब एक सजा बन गया था।
लेकिन हमारे चूहों जैसे पूर्वज बच गए, क्योंकि वे पहले से ही जमीन के नीचे छिपना जानते थे। उन्हें बहुत कम खाने की जरूरत थी और वे ठंडे और अंधेरे पर्यावरण के आदि थे।
कमजोरी थी वही उनकी ताकत बन गई।
ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन संतुलन है। और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं अपने वर्तमान महाकल्प में, सेनोजॉइक महाकल्प, जो 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू होकर आज तक चल रहा है।
डायनासोरों के हटने के बाद मैदान पूरी तरह साफ था। अब स्तनधारियों को कोई रोकने वाला नहीं था। पैलियोजीन और नियोजीन कल्पों में वे आकार में बड़े होने लगे। घोड़े, हाथी, वेल सबने अपने अपने विशाल आकार लिए। और फिर एक बड़ा बदलाव आया। जलवायु धीरे धीरे ठंडी होने लगी, घने जंगल सिकुड़ने लगे और दुनिया में पहली बार घास के बड़े बड़े मैदान फैले।
और मैंने पढ़ा है कि घास के इन मैदानों का विकास हमारे अपने अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। जंगलों के सिकुड़ने से हमारे मानव पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऊंची घास में शिकारियों को देखने के लिए उन्होंने दो पैरों पर खड़ा होना सीखा, जिसे बाइपेडलिज्म कहते हैं।
बिल्कुल। और इसके बाद आता है आज का क्वार्टरनरी कल्प, जो हिम युगों यानी आइस एजेस का समय था। बर्फ की चादरें फैलती और सिकुड़ती रहीं, जिसने मानवों को उपकरण बनाने और आग पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित किया।
और फिर आता है इस पूरे भूवैज्ञानिक कैलेंडर का सबसे आखिरी, सबसे छोटा पन्ना, होलोसीन युग। ये पिछले लगभग 11,700 वर्षों का समय है, जब जलवायु स्थिर हुई, हिमयुग खत्म हुआ और हम होमो सेपियंस ने खेती करना सीखा। हमारी पूरी मानव सभ्यता, ये शहर, ये तकनीक, सब कुछ इसी होलोसीन की देन है।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर जलवायु का ये छोटा सा स्थिर दौर नहीं आता तो शायद आज हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते।
कम सही बात है। तो इतने लंबे सफर के बाद सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान आज सुनने वालों के लिए क्यों मायने रखता है? ये सिर्फ म्यूजियम्स में जीवाश्मों को घूरने का विषय तो नहीं हो सकता?
कतई नहीं। ये ज्ञान हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य की रीढ़ है।
वो कैसे?
जैसा कि हमने चर्चा की, कार्बोनिफेरस काल के कोयले और प्राचीन महासागरों के सूक्ष्म जीवों से बने पेट्रोलियम पर ही आज की पूरी औद्योगिक दुनिया टिकी है। भूवैज्ञानिक इसी समय सारणी का इस्तेमाल करके खनिजों और ईंधनों का पता लगाते हैं।
मतलब हम अतीत का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाँ। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात है, क्वार्टरनरी कल्प के हिमयुगों की बर्फ के नमूने, जिन्हें आइस कोर्स कहते हैं, उनका अध्ययन करके ही हम जान पाए हैं कि अतीत में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर पृथ्वी का तापमान कैसे बदला था।
अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज का जो हमें पता चलता है वो यहीं से आता है।
बिल्कुल। इसी डेटा के आधार पर आज वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के मॉडल बनाते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। अतीत की चट्टाने वाकई भविष्य का आईना है।
वाकई हमने 4.6 अरब वर्षों का जो सफर तय किया उसमें एक बात बहुत साफ है, पृथ्वी कभी रुकी नहीं है। निरंतर बदलाव और सामूहिक विनाशी नए विकास की सीढ़ी रहे हैं। हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन का उदय, केम्ब्रियन विस्फोट, दलदली जंगलों का कोयला बनना और उल्कापिंड का गिरना, इन सभी घटनाओं ने एक दूसरे से जुड़कर आज का स्वरूप तैयार किया है।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचलित करने वाले सवाल की ओर ले जाता है।
कैसा सवाल?
देखिए, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अब हम होलोसीन से बाहर निकलकर एंथ्रोपोसीन यानी मानव युग में प्रवेश कर चुके हैं। पृथ्वी का हर युग चट्टानों में अपनी एक छाप छोड़कर गया है, जैसे डायनासोरों की छाप उनकी विशाल हड्डियों और उस क्षुद्र ग्रह की राख में दबी है। अगर हम इस भूवैज्ञानिक निरंतरता को देखें तो लाखों साल बाद जब भविष्य के भूवैज्ञानिक या कोई नई प्रजाति पृथ्वी की खुदाई करेगी तो वे हमारी परतों में क्या खोजेंगे?
ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है।
हमारी चट्टानों की परत में शायद उन्हें मिलेगा प्लास्टिक, कंक्रीट, मुर्गियों की हड्डियां और रेडियोएक्टिव कचरे का एक पतला सा निशान।
बस यही।
हाँ, यही हमारा भूवैज्ञानिक जीवाश्म होगा। ये इस बात का प्रमाण होगा कि एक ऐसी प्रजाति आई थी जिसने महज एक भूवैज्ञानिक पलक झपकते ही पूरे ग्रह की रसायन और जलवायु को बदल कर रख दिया था।
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस परत के ठीक ऊपर पृथ्वी का अगला महाकल्प किन जीवों का होगा? क्या हम उस भविष्य का हिस्सा होंगे या हम भी परमियन और क्रिटेशियस काल के उन जीवों की तरह किसी चट्टान की परत में दबी हुई एक याद बनकर रह जाएंगे?